देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. His Divine Grace, Abhay Charanar, Vinda Bhakti Vedanta, Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Shri Dwarka Puri Dham Ki Jai, Shri Dwarka Dhish Bhagavan Ki Jai, Shri Lakshmi Narayan Mandir Ki Jai, Shri Panchanada Tirtha Ki Jai, Shri Gomati Mata Ki Jai, Shri Gomati Sangam Tirtha Ki Jai, श्री चक्र तीर्थ भगवान की जय, श्री समुद्र नारायण भगवान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्नितिनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबको गोमती नदी और समुद्र के संगम में स्नान करने में आनंद आया होगा। वैसे कल एकादशी है और ऐसे कहा जाता है कि एकादशी की तिथि पर विशेष करके जो गोमती नदी में स्नान करते हैं वो पूरी अच्छी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। तो एक दिन पहले हमने कर लिया, फिर भी पवित्र नदियों में भक्ति भाव से स्नान करने से शुद्धिकरण तो होता ही है। और ऐसे पवित्र स्थान में द्वारकापुरी धाम में तो हमारा अहो सौभाग्य रहा है कि हम भगवान के धाम में आ पाए हैं, भगवान के दर्शन हमने किए हैं और भगवान की प्रिय गोमती नदी में भी हम स्नान कर चुके हैं। द्वारकाधीश भगवान ये द्वारकाधीश मंदिर का सुंदर दृश्य यहाँ से देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो ध्वज है उनमें बताया गया है कि ये दिन में अब ये तीसरा चौथा ध्वज है, आज एक दिन का ध्वज बदले हैं, ये बदलते रहते हैं। और कितना विशाल ही राजते सकले परम, भगवान श्री कृष्ण राज करते हैं समस्त सृष्टि पर। ये ध्वज इसके ऊपर चांद और सूरज के लक्षण है, चिन्ह होते हैं। तो इस ध्वज से और सुंदर यहाँ रोशनी भी दी जाती है जिससे शोभा और भी मंदिर की बढ़ती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, शिल्प शैली इसकी काफी विशेष है। मंदिर का स्थापत्य बड़ा अद्भुत है, आपने करीब से देखा भी होगा। यहाँ निर्माण कार्य में आप देखेंगे गोल या अर्ध गोलाकार कमान नहीं दिखाई देंगे आपको, इसमें न लकड़े न लोहे का इस्तेमाल किया गया है। और शायद 72 कोई खंबे हैं इसमें, इस मंदिर में देखने में बहुत सुंदर स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने यहाँ मिलते हैं इस मंदिर में। पुराने काल के मंदिरों का निर्माण कार्य ऐसे ही अद्भुत हुआ करता था। अलग अलग शिल्प शैलियों के निर्माण हुए हैं यहाँ पर। कितने सूक्ष्म सूक्ष्म शिल्प कला का प्रदर्शन हम देखते हैं यहाँ पर। और इतने साल हो गए, फिर भी यहाँ अनेक तूफान आने के बाद भी, भूकंप होने के बाद भी, तरह तरह के प्राकृतिक या नैसर्गिक जो आपत्तियां हैं आने के बाद भी, इस मंदिर में कोई नुकसान हुआ नहीं है, वैसे का वैसे रहा है। यह मंदिर के वैसे दो द्वार हैं, एक है मोक्ष द्वार, जिस द्वार से हम लोग प्रवेश कर किए थे पहले, और दूसरा द्वार है स्वर्ग द्वार, जो गोमती नदी की ओर आता है, पीछे वाला दक्षिण भाग में। और फिर उन सीढ़ियों से उतर के हम गोमती घाट में आते हैं। तो ये दो मुख्य द्वार हैं यहाँ के। पहले जब आते हैं तो गोमती नदी यहाँ लगती है। गोमती नदी यहाँ चल के समुद्र को मिलती है, इसलिए ये संगम का स्थान है। तो इसे गोमती घाट या गोमती संगम घाट कहते हैं। जैसे हम सुबह बता रहे थे कि ये साक्षात गंगा नदी है, जिनको लेकर वशिष्ठ मुनि स्वर्ग लोक से यहाँ आए थे, और क्योंकि वो अवतीर्ण हुई थी इसलिए गो, तो नाम हुआ गोमती। यहाँ गंगा माता के मंदिर या गो माता या गोमती माता के मंदिर भी दिखाई पड़ेंगे। और सुबह हम ये भी बता रहे थे कि चतुष्कुमार यहाँ आए थे तपस्या करने के लिए, अपने पिताजी के कहने पर, ब्रह्मा जी के कहने पर, और फिर भगवान प्रसन्न हुए, चक्र रूप में यहाँ प्रकट हुए, इसलिए वहाँ चक्र नारायण मंदिर है। हम जहाँ समुद्र नारायण का मंदिर करने गए थे, दर्शन करने गए थे, वो रहा बिल्कुल कोने में, आप देखिए वहाँ दिखता है वो समुद्र नारायण मंदिर, और आगे उस तरफ हम वहाँ गए नहीं, वहाँ चक्र नारायण मंदिर है। और जहाँ पे ये संगम है, इसे चक्र तीर्थ कहते हैं। उस चक्र तीर्थ स्थान में एक चक्र है, वो जिन पत्थरों से वो बना हुआ है, उसको द्वारका शिला कहते हैं या चक्रांकित कहते हैं। तो ये बहुत ही एक विशेष प्रकार का पत्थर है। और यहाँ ये समुद्र नारायण मंदिर है। दुनिया में एक ही ऐसा मंदिर है जिसको समुद्र नारायण या संगम नारायण कहते हैं। ऐसे बताया जाता है कि ये वही भगवान है जो समुद्र में शयन करते हैं, अर्थात गर्भोदकशायी विष्णु के। वैसे गर्भोदकशायी विष्णु के अवतार अर्चा विग्रह हो भी सकते हैं, परंतु समुद्र के तट में ऐसे समुद्र नारायण ये एक ही हैं। तो यहाँ समुद्र नारायण भगवान विराजमान है, चक्र नारायण भगवान विराजमान है, चक्र तीर्थ स्थान है यहाँ पर। चक्र तीर्थ घाट है जहाँ गोमती नदी का संगम है समुद्र के साथ में, और उसके पास में गोमती कुंड है, गोमती के तट पर जहाँ की गोमती संगम है। और उस स्थान में स्नान करना बहुत पावन माना जाता है। उस स्थान में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दुर्वासा मुनि की सेवा की थी। सुदामा जी का भी मंदिर है वहां पास में। और गोमती नदी के ऐसे 12 प्रमुख घाट बताए जाते हैं यहाँ पे, और अलग अलग घाटों में ही ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे समुद्र नारायण मंदिर है, चक्र नारायण मंदिर, गोमती जी का मंदिर है, और जिस स्थान में हम बैठे हैं पंचनद तीर्थ, ये भी गोमती नदी के 12 घाटों में से एक घाट में स्थित है। वैसे गोमती नदी का जल बहुत ही स्वच्छ होता है। आज तो ऐसे नहीं देख पाए, लेकिन अक्सर ऐसे कहा जाता है कि इतना साफ होता है पानी कि नीचे जमीन, पानी के नीचे जो जमीन मिट्टी है वो भी आप देख सकते हैं, और आप देखेंगे कि समुद्र के लहरें भी नदी में आती हैं, क्योंकि ये संगम है तो नदी का प्रवाह तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है समुद्र की ओर, परंतु समुद्र का जल अंदर की ओर आ रहा है, तो दोनों का टक्कर होता है। तो कभी कभी समुद्र का प्रवाह होने पर, ज्यादा होने पर जल इस तरफ बहता है, और जब कभी उल्टी दिशा में बहता है। तो ये गोमती नदी है, ये ज्वारा के ऊपर निर्भर है। तो जब उच्च ज्वारा होती है तो पानी अंदर आता है नदी में, निम्न ज्वारा होती है लो टाइड, तो फिर नदी का जल फिर समुद्र में चले जाता है। इसलिए यहाँ जब हम स्नान कर रहे थे तो कभी कभी आपने देखा होगा, कभी पानी नमकीन लग रहा था तो कभी मीठा लग रहा था। जब नदी का जल है वो तो मीठा है, समुद्र का जल वो तो नमकीन होता है। ऐसे इस संगम में स्नान करना बहुत एक पावन धार्मिक कार्य माना जाता है, परंतु हम जब स्नान करने आते हैं केवल पाप धुलाने के लिए नहीं आते। पाप धोने के लिए तो हमारे पास हरि नाम है, और हरि नाम से पाप धोने की बात तो दूर है, कृष्ण प्रेम भी हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु कृष्ण नाम लेने के लिए हमें कोई स्वीकृति चाहिए, कोई और सहायता चाहिए, क्योंकि हरि नाम में अभी तक रुचि इतनी उत्पन्न नहीं होती है आसानी से। और ऐसे भक्तों के संग में हम धामों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, भगवान का, उनकी लीलाओं का, उनके धाम का आदि वर्णन सुनते हैं, तो हृदय शुद्ध हो जाता है, जिसके द्वारा भगवान के प्रति श्रद्धा और आकर्षण बढ़ जाती है। फिर हरि नाम हम और अच्छी तरह से ले सकते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं केवल कृष्ण की बात नहीं करते, क्योंकि कृष्ण हर वस्तु के उद्गम हैं, सब कुछ श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होता है। इसलिए श्री कृष्ण को अकेले कभी नहीं देखा जाता, और भक्ति के दृष्टिकोण से भी श्री कृष्ण को उनके भक्तों के साथ में देखा जाता है। भगवान के से संबंधित ऐसे कई वस्तुएं या व्यक्ति हैं जो भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो जब भक्त भगवान की उपासना करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान से संबंधित इन चीजों को या व्यक्तियों को भी अपनी चेतना में रखते हैं। इस सेवा को तदीय सेवा कहते हैं। तदीय सेवा अर्थात उन व्यक्तियों और चीजों की सेवा जो भगवान से संबंधित हैं, जैसे गौ माता, तुलसी, वैष्णव, यमुना, गंगा, गोमती आदि। तो ये तदीय सेवा है। साथ साथ में भगवान को समझना है तो भगवान का रूप जानना है, भगवान के गुण, भगवान के का यश, भगवान की लीलाएं, भगवान के अनेक नाम, भगवान का धाम, तो इन सब चीजों को जानना आवश्यक है। जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं तो अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों को साथ में लेकर आते हैं, और यहाँ तक कि अपने धाम को ही लेकर आते हैं। जैसे हम पिछले 2 दिनों में चर्चा कर रहे थे कि ये भौम द्वारका है, और आध्यात्मिक जगत में पर व्योम द्वारका है। जैसे यहाँ भौम वृंदावन है और भगवान के धाम में पर व्योम वृंदावन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये भी धाम ही है। जब भगवान श्री कृष्ण का तिरुभाव हुआ, और इसकी चर्चा हम कल और परसों करेंगे, तो भगवान तो चले गए, परंतु उन्होंने ऐसी कृपा की कि हमारे लिए एक धाम, वो उनका धाम भी छोड़ कर गए हैं, ताकि हम सब आके यहाँ लाभ उठा सकें। अब जिस स्थान में हम बैठे हैं ये पंचनद तीर्थ कहलाता है। यहाँ एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है अंदर, इसी स्थान में दुर्वास मुनि तपस्या करते थे। अंदर ही अंदर जब जाएंगे, आप गए होंगे, बाएं तरफ आपने पेड़ देखा होगा, तो उस पेड़ के नीचे वहीं पे दुर्वास मुनि जी की मूर्ति है। तो उस ऐसे बताया जाता है कि वहां बैठकर वो तपस्या करते थे। और फिर अंदर जाके सीध बिल्कुल बाएं ओर कोने में, वहां नदी के और उस तरफ वहां एक गुफा है। गुफा तो बंद रहता है, परंतु ऐसे बताया जाता है कि दुर्वास मुनि वहां तपस्या करते थे प्रायश्चित करने के लिए। किस चीज का प्रायश्चित करना था? उन्होंने रुक्मिणी देवी को श्राप दिया था। अब वो भले रुक्मिणी देवी को श्राप क्यों देंगे और कैसे दिया, क्या इसका इतिहास है, वो कल जब हम रुक्मिणी देवी के मंदिर में जाएंगे बेट द्वारका जाते समय वो वहां चर्चा करेंगे। परंतु दुर्वासा मुनि को बहुत बुरा लगा कि अरे रे, हमने रुक्मिणी देवी को श्राप दे दिया, जबकि वैसे उनकी गलती थी नहीं। तो फिर यहाँ आकर उस गुफा में बैठ के तपस्या करने लगे। हम पहले कह ही चुके हैं कि गोमती कुंड के पास श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि की सेवा करते थे। और ये पंचनद तीर्थ क्यों है और ये कुएं क्या है? ऐसे बताया जाता है कि यहाँ पर पांच ऋषि आए थे, वो यहाँ तपस्या करने आए थे। तपस्या की उन्होंने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह और क्रतु। ये स्थान तीर्थ स्थान बन गया है यहाँ पर, पंचनद तीर्थ। उनकी वजह से उन्होंने यहाँ प्रार्थना की, अपनी तपस्या की, अपनी योग सिद्धि से उन्होंने पांच पवित्र नदियों के जल का आह्वान किया। क्यों किया? क्योंकि इस समय यहाँ पर पांच पांडव अपनी माता कुंती के साथ आए थे, सब कुछ हार चुके थे द्यूत क्रीड़ा में। युधिष्ठिर महाराज और उनके भाइयों को वनवास में जाना पड़ा था। इधर उधर घूमते घूमते वो यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे आके वो लोग तपस्या कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनको उनकी बहुत निंदा हुई कि आप लोग ने द्यूत क्रीड़ा करके ऐसे आपने हार डाला आपका सारा राज इत्यादि। तो ये पांच ऋषि वहां थे, उनके ऊपर कृपा करने के लिए पधारे और उन्होंने पांच कुंड बनाए। यहाँ पर छोटे कुएं हैं या पांच, इनमें पवित्र नदियों का आह्वान करके ये कुंड बनाए गए। आप देखोगे कि ये पांच कुंड में जो जल है वो मीठा है, हालांकि बाकी यहाँ जाओगे तो समुद्र का पानी है जो कि खारा है, परंतु यहाँ ये पानी मीठा है। इतना ही नहीं, ये पांचों जो कुओं का पानी है मीठा है, लेकिन इसके स्वाद अलग अलग हैं, क्योंकि हर एक पांच पांडवों में से हर एक पांडव के लिए एक एक कुआं बनाया गया है, और पांचों में से पांचों के स्वभाव अलग अलग थे, इसलिए स्वाद पानी का अलग अलग है। हम कहते हैं ना कि पांच उंगली हमारे एक बराबर नहीं होती, सबके आकार सब कुछ अलग अलग होते हैं, कोई दो व्यक्ति अलग नहीं होते। भगवान के शुद्ध भक्त भी होते हैं तो सबका स्वभाव अलग होता है। तो ऐसे भिन्नता में एकता हमें देखनी चाहिए। हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति एक जैसा रहेगा, नहीं। एकता हमारी किस चीज में है? कृष्ण भक्ति में, इस जानकारी में, इस निश्चय में कि हम श्री कृष्ण के दास हैं, और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना, श्री कृष्ण की सेवा करना ही हमारा एकमात्र कार्य है। तो इस एक सिद्धांत के ऊपर हमारी एकता होगी। ये तो स्वाभाविक है और होगा ही कि हम सबका स्वभाव अलग अलग होगा, इसलिए सबके स्वभाव अलग अलग होने के कारण हमें आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ जगत में भी प्रत्येक जीव के स्वभाव अलग अलग होते हैं। एक रस के अंदर भी, जैसे समझ लीजिए माधुरी रस है, वृंदावन में श्री कृष्ण की कितनी गोपियां थीं, सबके स्वभाव अलग अलग। ललिता देवी का स्वभाव एक प्रकार से था, थोड़ा गर्म स्वभाव था। विशाखा देवी का कुछ और था, थोड़ा सौम्य था। अलग अलग गोपियों के स्वभाव अलग अलग, सब माधुर्य रस में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं फिर भी। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण के रानियों के स्वभाव अलग अलग हुआ करते थे। जैसे हम पत्र प्रभु से सुबह सुन रहे थे, रुक्मिणी देवी का स्वभाव बड़ा सौम्य था, सत्यभामा देवी का स्वभाव थोड़ा गर्म हुआ करता था बीच में। तो ऐसे सबका स्वभाव अलग अलग है, परंतु केंद्र बिंदु श्री कृष्ण है, हृदय में केवल श्री कृष्ण है, इसलिए भिन्नता में ये एकता है। तो पांच पांडव, इनका भी स्वभाव अलग अलग था। भीमसेन का स्वभाव एक प्रकार, अर्जुन का दूसरा, युधिष्ठिर का तीसरा, सहदेव नकुल, इनका अलग अलग स्वभाव। तो इस तरह से ये पांच नदियां कुंड या कुंड बन गए, और जिन पांच नदियों से इन पांच ऋषियों ने जल का आह्वान किया वो है जम्बुवंती नदी जो गया से है, वहां का जल लेकर यहाँ भीम कुंड बनाया। गोमती नदी जो लखनऊ में है, दो गोमती नदी है, एक यहाँ की है एक वहां की है, लखनऊ की उत्तर प्रदेश में जाके फिर वो गंगा से मिलती है। गोमती नदी लखनऊ के पास में जो है, वहां की नदी से यहाँ अर्जुन कुंड की स्थापना हुई। फिर उषावती नदी जो गोवा में है, तो वहां उस नदी से का जल लेकर यहाँ नकुल कुंड की स्थापना की उन ऋषियों ने। फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र के चंद्रभागा नदी के जल को ले आकर यहाँ सहदेव कुंड बनाया गया। और फिर लक्ष्मणा नदी जो बद्रीनाथ और हिमाचल प्रदेश की नदी है, वहां से जल ले आकर युधिष्ठिर कुंड बनाया गया। तो ऐसे ये पांच कुंड हैं। और आपने तो अपने अनेक भक्तों ने शायद वो जल का पान भी किया होगा वहां पे। यहाँ पे पांडवों के पद चिन्ह भी हैं, चरण चिन्ह भी हैं, यहाँ पर कुंती महारानी के भी हैं साथ साथ में। और ऐसे बताया जाता है कि वो यहाँ साधु हैं क्या, यहाँ के ये कहते यहाँ वो पत्थर भी है जो तैर रहा है, अंदर है। तो खैर, यहाँ ये पंचनद तीर्थ है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, और ये पांच कुएं हैं। और यहाँ इस शीतल वातावरण में बैठकर द्वारकाधीश भगवान के ध्वज का दर्शन करके हमें अपना जीवन सार्थक समझ लेना चाहिए। जब भगवान के मंदिर के अंदर किसी कारणवश हम नहीं जा पाते हैं, तो मंदिर के ऊपर जो ध्वज होता है उसका दर्शन करने से भगवान के श्री विग्रह का दर्शन हो गया, ऐसे मानना चाहिए, ऐसे माना जाता है। तो यहाँ बैठकर जो ध्वज का दर्शन हम कर रहे हैं, सुंदर मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, तो साक्षात भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करने के बराबर ही है ये। तो इस पावन भूमि में बैठकर हम बड़े आराम से बिना चिंता के यहाँ रह सकते हैं। स्नान करते समय भी हाँ मनोरंजन आनंद तो होता ही है अवश्य, परंतु साथ साथ एक हृदय के भीतर गंभीरता भी होनी चाहिए कि जिस जल में हम स्नान कर रहे हैं वो साधारण जल नहीं है, ये बहुत पावन जल है। देखिए, भारत भूमि पावन भूमि है, कितने पवित्र नदियां हैं यहाँ पर। हमारा कितना सौभाग्य है कि यहाँ जन्म हुआ है, इसलिए इस आध्यात्मिक जीवन को बहुत गंभीरता से हमें लेना चाहिए। और जहाँ भी ऐसे पवित्र नदियां होती हैं, पवित्र स्थान होते हैं, चेतना में कितना फर्क पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है। आप में से जो भक्त बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री आदि की यात्रा में आए थे, हरिद्वार, ऋषिकेश, वहाँ यमुना नदी, गंगा नदी को देखकर कैसा प्रभाव हृदय के ऊपर पड़ा। यदि वहाँ इतनी ठंडी नहीं होती यमुनोत्री में, तो मेरे ख्याल से सभी भक्त वहीं पर रह जाते, सब अपने परिवार और अपने व्यवसाय सबको भूल कर। और यहाँ उस शहरी भाग में तो हल्ला गुल्ला बहुत हो रहा है, गाड़ियां हैं, उनकी आवाजें सुनाई दे, हल्के से सुनाई दे रही हैं। हलचल वहां, शहरी हलचल वहां है, लेकिन ये द्वारका धाम भी है यहाँ। और इस शांत वातावरण में बैठकर अभी हम आसानी से चिंतन मनन कर सकते हैं। कल हम जब बेट द्वारका जाएंगे, सुबह सुबह निकलेंगे, वहां पर भी समुद्र पार करना होगा नौके में बैठकर। तो नौके में बैठकर भी कीर्तन करते करते सभी को जाना चाहिए। अभी ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक यहाँ पर भगवान का कीर्तन होना चाहिए, जप होना चाहिए। तो आइए ऐसा करते हैं, अब यहाँ बैठकर एक माला जप करते हैं, झोप नहीं, मराठी में झोप मतलब नींद। तो बड़े ध्यान से एक माला अच्छी तरह से, अब कोई बीच में आपस में बात नहीं करेंगे, केवल अपने हरि नाम के ऊपर पूरा ध्यान देकर स्पष्ट उच्चारण करके हम यहाँ भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे, ठीक है।